समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओं, स्वागत अभिनंदन आप सभी का कार्यक्रम परिक्रमा में, जिसमें हम लेकर आए हैं आपके लिए तमाम खबरें और महत्वपूर्ण जानकारी। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे और साथ ही हम चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा तमाम गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर। आज परिक्रमा के इस अंक में मैं हूं निखिल कुमार, मेरे साथ में है अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, स्वागत है आपका भी कार्यक्रम परिक्रमा में।
Hello Nikhil, hello and good afternoon. You're tuned to our news magazine program Parikrama on 100.1 FM. I am Abhishek Mukhopadhyay. With me today is my co-host Nikhil Kumar. And for you, we have a selection of news, a discussion segment, Dateline India, reports, capsules, tributes and much more for our listeners today. All this over the next 30 minutes. We'll begin with the news headlines first. National Conference leader Omar Abdullah takes oath as the Chief Minister of Jammu and Kashmir.
नायब सिंह सैनी हरियाणा में भाजपा विधायक दल के नेता चुने गए, वे कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
एक्सटर्नल अफेयर्स मिस्टर डॉ एस जयशंकर वॉन्स क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज मार्क्ड बाय टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म अंडरमाइन एफर्ट्स टू बूस्ट ट्रेड एंड कनेक्टिविटी।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा के दूसरे चरण में आज शाम मॉरिटानिया पहुंचेंगे।
सुप्रीम कोर्ट क्रिटिसाइजेज हरियाणा एंड पंजाब गवर्नमेंट्स फॉर नॉन कंप्लायंस इन इट्स ऑर्डर रिलेटेड टू एयर पॉल्यूशन ड्यू टू स्टबल बर्निंग।
और स्टॉकहोम ओपन टेनिस टूर्नामेंट में आज शाम पुरुष सिंगल्स में सुमित नागल का मुकाबला फ्रांस के क्वेंटिन हेलिस से होगा।
And now, Nikhil, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about World Food Day.
अभिषेक, विश्व समाज के संतुलित विकास के लिए ये आवश्यक है कि मनुष्य का सर्वांगीण विकास हो। विश्व में लोगों को संतुलित भोजन की इतनी मात्रा मिले कि वे कुपोषण के दायरे से बाहर निकलकर एक स्वस्थ जीवन जी सकें। और लोगों को जो संतुलित भोजन मिले उसके लिए ये आवश्यक है कि विश्व में खाद्यान्न का उत्पादन भी पर्याप्त मात्रा में हो। हालांकि दिन प्रतिदिन विश्व की जनसंख्या में हो रही वृद्धि और खाद्य पदार्थों के सीमित भंडारण को देखते हुए अब खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने की जरूरत महसूस की गई है और इस सिलसिले में कई प्रयास भी हो रहे हैं।
Yes, today we are observing World Food Day. The objective of World Food Day is to eradicate hunger, ensure food security, boost agricultural productivity and support a sustainable food system. It is a day organized by the United Nations to raise awareness about hunger around the world. This year's theme is Foods for a Better Life and a Better Future. This theme emphasizes the fundamental human rights to accessible, nutritious, affordable and sustainable food to ensure everyone's well-being and dignity.
श्रोताओं, जब भोजन की बात आती है तो पूरी दुनिया दो बड़ी चुनौतियों से जूझ रही है। एक तो है भूख की समस्या, अंततः जिसमें बच्चों में असामान्य वृद्धि, कुपोषण और मृत्यु का कारण भी बन जाता है। वहीं दूसरा मुद्दा स्वस्थ आहार के उपभोग के संबंध में है, जो एक समस्या है। इसके अलावा जीवन शैली के नियमित न होने से लोगों में मधुमेह और मोटापे की समस्या भी आए दिन देखने को मिलती है। अगर हम पुराने इतिहास की बात करें तो हमारे पूर्वजों को भोजन का महत्व हजारों साल पहले पता था और आज हम इन सब चीजों को भूलते जा रहे हैं, क्योंकि भोजन केवल पोषण का स्रोत नहीं बल्कि ये प्रकृति का एक अनमोल उपहार भी है, जिसे संजोया और सम्मान दिया जाना चाहिए।
Yes, Nikhil, the way we treat food reflects our attitude towards life and the environment. The Food and Agriculture Organization, FAO, came into existence in 1945 and the World Food Day came into existence in 1979. When the 20th FAO conference declared October 16th as the World Food Day, over 150 countries joined the movement observing this day to raise awareness about hunger, malnutrition and food, promoting sustainable solutions for a zero hunger world.
दुनिया भर में खाद्य सहायता प्रदान करने के लिए खाद्य और कृषि संगठन की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी और उसके कुछ साल बाद विश्व भूख के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक दिवस को मनाने का फैसला किया गया।
The world's farmers produce enough food to feed more than the global population, yet hunger persists. Around 733 million people are facing hunger in the world due to repeated weather shocks, conflicts, economic downturns, inequality and the pandemic, and this impacts the poor and the vulnerable most severely, many of whom are agricultural households, reflecting widening inequalities across and within countries.
श्रोताओं, आपको जानकर हैरानी होगी कि खाद्य और कृषि संगठन FAO की 2023 की रिपोर्ट से ये जानकारी मिली है कि वैश्विक खाद्य उत्पादन का लगभग 30% हिस्सा या तो खराब हो जाता है या बर्बाद हो जाता है, जो अनेक भूखों को खाना खिला सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि यह मुद्दा तत्काल कार्रवाई की मांग करता है, खासतौर पर भारत जैसे देश में जहां पर फसल कटाई के बाद भी नुकसान काफी अधिक देखने को मिलता रहा है।
यस निखिल, फूड इज द थर्ड मोस्ट बेसिक ह्यूमन नीड आफ्टर एयर एंड वाटर। एवरीवन शुड हैव द राइट टू एडिक्वेट फूड। Human rights such as the right to food, life and liberty, work and education are recognized by the Universal Declaration of Human Rights and two legally binding international covenants.
खाद्य पदार्थ की जहां पर हम बात करते हैं वहां पर इसका अर्थ विविधता, पोषण, सामर्थ्य, पहुंच और सुरक्षा है, यानी कि सभी के लिए पौष्टिक आहार उपलब्ध हो और हमारे खाने की मेज पर ऐसा आहार उपलब्ध हो जिसमें विविधता भी हो और आसानी से पहुंच भी उपलब्ध हो।
Over 2.8 billion people, Nikhil, in the world are unable to afford a healthy diet. Unhealthy diets are the leading cause of all forms of malnutrition, undernutrition, micronutrient deficiencies and obesity, which now exist in most countries, cutting across socio-economic classes. Yet today too many people suffer from hunger and are unable to afford healthy diets.
श्रोताओं, जो अधिक निशक्त या कमजोर लोग होते हैं, खासतौर पे आर्थिक कमजोर लोग जो होते हैं, उन्हें देखा जाए तो खाद्य पदार्थों की वो गुणवत्ता नहीं मिल पाती है जो महंगे खाद्य पदार्थों में उपलब्ध होती है, यानी कि कम महंगे खाद्य पदार्थ यानी कि जिनकी गुणवत्ता भी सीमित होती है उन पर निर्भर रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जो कि अस्वास्थ्यकर हो सकता है काफी हद तक। जबकि एक तरफ दूसरा समाज भी है जिसके पास अत्यधिक मात्रा में ये सारी चीजें उपलब्ध होती है, यानी कि बैलेंस की कमी होती है, और जहां पर विविध खाद्य पदार्थों की अनुपलब्धता होती है वहां पर समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। ऐसे में स्वस्थ आहार चुनने के लिए आवश्यक जानकारी होना भी जरूरी है, क्योंकि इसका अभाव लोगों के सामने समस्या खड़ा कर सकता है। तो सुविधा का विकल्प चुनने के लिए भी हमारे पास जानकारी होना जरूरी है। अभिषेक,
यस एब्सोल्युटली, एंड हंगर एंड मेल न्यूट्रिशन आर फर्दर एग्जैजिबेटेड बाय प्रोट्रैक्टेड एंड प्रोलॉन्ग क्राइसिस दैट आर ड्रिवन बाय कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एंड इकोनॉमिक शॉक्स। Agri-food systems as a whole are vulnerable to disasters and crises, particularly the impacts of climate change, but at the same time, they are generating pollution, degrading soil, water and air, and contributing to greenhouse gas emissions and biodiversity loss. By transforming agri-food systems, there's a great potential to mitigate climate change and support peaceful, resilient and inclusive livelihoods for all. Talking about on the good initiative, there's food fortification. Eating poor quality food can lead to malnourishment and anemia, which are prevalent among children and women in the Indian community. And in an attempt to reduce the prevalence of malnutrition and anemia, India has been practicing food fortification since the
1950s. खाद्य पदार्थों की बात करें तो खाद्य सुदृढ़ीकरण में रासायनिक, जैविक या फिर भौतिक तरीकों से भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों को शामिल करना जरूरी है। अगर खाद्य पदार्थों की हम बात करें जो हम नॉर्मली अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, तो उनमें चावल, गेहूं का आटा, दाल, खाद्य तेल, नमक और दूध या चीनी वगैरह शामिल होते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि गरिष्ठ भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा लगभग 40% से लेकर 60% तक की कम आय वाली महिलाओं और बच्चों द्वारा नहीं खाया जाता, यानी कि एक बहुत ही जरूरी हिस्सा भोजन का इन लोगों तक नहीं पहुंच पाया जाता। ऐसे में मुख्य रूप से कुछ राज्यों के द्वारा फोर्टिफाइड भोजन खरीदने में विफल रहने, फोर्टिफाइड भोजन के बारे में जानकारी के संबंध में सार्वजनिक आपूर्ति श्रृंखलाओं में पारदर्शिता की कमी होना और ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण चैनलों की कमी के कारण ये सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं, जिन पर काम करना बहुत ही आवश्यक है।
यस, फूड वेस्ट इन रेस्टोरेंट्स एंड कैफेज स्टेम्स फ्रॉम ओवर प्रोडक्शन, लार्ज पोर्शन साइजेस एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑफरिंग अ वाइड वेराइटी ऑफ डिशेस लीडिंग टू स्पॉयलेज। Additionally, customers often overorder, leaving food uneaten or discarded, and a lack of awareness among staff and patrons about the economic, social and environmental impacts further exacerbate the problem. And thinking there is excess food in the world is one problem we need to tackle. Many people consider heavy plate as a symbol of prosperity. Increase food ordering through food ordering apps, etc.
अभिषेक, एक सोचने वाली बात यह है कि शहरी क्षेत्रों में अधिक मात्रा में भोजन बर्बाद होता है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में कम होता है क्योंकि बचा हुआ खाना जानवरों को खिला दिया जाता है। खासतौर पर ग्रामीण समुदायों में अक्सर ऐसी प्रथाएं देखी जाती हैं जहां पर बचे हुए भोजन का उपयोग कर लिया जाता है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि शहरी क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं उन्हें इस विषय में ज्यादा ध्यान देने और ज्यादा सोचने की जरूरत है।
यस, एंड दिस ईयर द मैसेज बिहाइंड वर्ल्ड फूड डे 2024 aligns with the broader goals of achieving zero hunger by 2030. It is a commitment made by the international community through the UN Sustainable Development Goals, SDGs. However, as we approach the year 2030, the issue of food insecurity is becoming even more urgent. World Food 2024 is not just an event that needs to be celebrated. It's a reminder of how much work still needs to be done.
दोस्तों, भोजन की हानि और बर्बादी को कम करना केवल आर्थिक क्षमता में सुधार का मामला नहीं है बल्कि ये पर्यावरणीय क्षति को कम करना है और साथ ही लाखों करोड़ों लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा की रक्षा करने के बारे में भी है। यानी कि हमारे द्वारा कम से कम की गई बर्बादी अधिक से अधिक लोगों के लिए भोजन उपलब्ध करा सकती है और सहायक नीतियों के साथ साथ तकनीकी नवाचार भोजन की बर्बादी को 50% तक कम करने का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं।
कॉन्फ्लिक्ट एंड हंगर क्रिएट अ विशियस साइकिल. When war erupts, instability forces people to find illicit and sometimes violent means of acquiring the necessities. In this unstable period where access to food is fought over, the risk of social unrest heightens, and there is a powerful call to action recognizing the important link between conflict and hunger and the critical role of food assistance as a building block to peace and stability.
हम बहुत कुछ कर सकते हैं इन सारी चीजों के लिए, यानी कि जलवायु परिवर्तन, भोजन की उपलब्धता और भोजन तक पहुंच की चुनौतियों से निपटने के लिए। हमें किसानों को अधिक प्रकार की विविध फसलों को उगाने और पशुधन के लिए भी मदद करनी चाहिए। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम कई किसानों को तकनीकें सिखाता है और इन्हीं तकनीकों से लैस होकर के हमें भी आगे काम करने की जरूरत है।
यस, एंड सो टू एंड डिस्कशन let me leave the listeners with the words of John F. Kennedy, who said the war against hunger is truly mankind's war of liberation.
और श्रोताओं, समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास जाने का और उनसे जानने का कि क्या विशेष लेकर के वो आए हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि विश्व दूर संचार मानकीकरण सभा यानी कि WTSC 2024 नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी है। विश्व दूर संचार मानकीकरण सभा अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ डिजिटल प्रौद्योगिकी के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के मानकीकरण कार्य के लिए एक शासी सम्मेलन है। ये सम्मेलन हर 4 साल में आयोजित जाता है। भारत के लिए बहुत ही खास है क्योंकि यह पहली बार है जब अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU और वैश्विक दूरसंचार मानकीकरण सभा यानी कि WTSE का आयोजन भारत यानी कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में पहली बार किया जा रहा है। तो इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता दीपेंद्र के पास।
यह अंतर्राष्ट्रीय आयोजन भारत को वैश्विक दूरसंचार एजेंडे और भविष्य की तकनीक को दिशा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर प्रदान कर रहा है। साथ ही भारतीय स्टार्टअप को बौद्धिक संपदा अधिकार से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने में मदद पहुंचाएगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए जर्मनी से आई एक प्रतिभागी अनीता डोहलर ने कहा कि आने वाले समय में भारत वैश्विक दूरसंचार बाजार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा क्योंकि यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल बाजार है।
Definitely will play a significant role, for instance having the second largest mobile network already installed, and we look forward to collaborate.
इस 10 दिवसीय वैश्विक कार्यक्रम के दौरान दूरसंचार उद्योग की आवश्यकताओं और भविष्य पर आधारित विषयों पर कई सत्र आयोजित किए जाएंगे। इनमें नवाचार को लेकर भविष्य के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा, ऑडियो विजुअल मीडिया से जुड़े विषय, डेटा सुरक्षा और डिजिटल विभाजन की चुनौतियों से जुड़े विषय शामिल हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
The 8th edition of India Mobile Congress, IMC, has been held in New Delhi. The 4-day event is showcasing India's innovation ecosystem. This event features over 400 exhibitors, around 900 startups, and the participation from 120 countries. And our correspondent reports that leading telecom companies and innovators are highlighting the advancements in quantum technology and circular economy in the event. We have a report.
India Mobile Congress is Asia's largest digital technology forum for showcasing innovative solutions, services and state-of-the-art use cases for industry, government, academics, startups and other key stakeholders in technology and telecom ecosystem. The event also aims to showcase more than 900 technology use case scenarios, host more than 100 sessions and discussion with over 600 global and Indian speakers. The event spotlights on 6G, 5G use case, cloud and edge computing, IoT, semiconductors, cybersecurity, green tech, satcom, and electronic manufacturing. Talking exclusively to Akashvani News, an international exhibitor said that IMC is helping them to showcase their products and services to the potential buyer under the one roof.
It's great. I've been all around the world, but India is still really growing and there are lots of opportunities for us, so we've been really excited to be here this week. In the first day here, it's amazing how much opportunities we've had. We've obviously set up meetings before we came here with people we know. There's just been a constant stream of people coming past the booth here, wanting to know about our products, wanting to partner with us in lots of different ways.
The four-day event will culminate on 18th of this month. Saklain Akhtar for Parikrama.
पंजाब में पराली जलाने की समस्या लगातार गंभीर बनी हुई है। धान की कटाई के बाद किसान खेतों को अगली फसल के लिए तैयार करने के उद्देश्य से धान की पराली को खेत में ही जला देते हैं। इससे न सिर्फ वायु प्रदूषण बढ़ता है बल्कि जमीन की गुणवत्ता पर भी बुरा असर पड़ता है। हमारे संवाददाता का कहना है कि पंजाब सरकार ने इस समस्या पर काबू पाने के लिए कई कदम उठाए हैं।
पंजाब में धान की कटाई शुरू होने के साथ ही खेतों में पराली को आग लगाने की घटनाएं भी बढ़ गई हैं। इससे वायु प्रदूषण की स्थिति भी गंभीर हो रही है। हालांकि प्रदेश सरकार और प्रशासन किसानों को पराली न जलाने की अपील कर रहा है। पराली को खेत में जलाने से रोकने के लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत है। इसके लिए सरकार प्रदेश के किसानों से सब्सिडी पर मशीनरी मुहैया कराने के युद्ध स्तर पर प्रयास कर रही है। एक और बड़े फैसले में सरकार ने पराली के उचित प्रबंधन के लिए 80% सब्सिडी पर ऋण मुहैया कराने की पेशकश की है। मोहाली से खेतीबाड़ी अफसर गुरदयाल कुमार ने पराली प्रबंधन के बारे में जानकारी देते हुए बताया।
पराली प्रबंधन दे लई सरकार वालों ते जिला प्रशासन मोहाली वालों बहुत ही सिर तोड़ उपराले किए जा रहे ने। साडे कोल मशीना जो अपा सबसिडी ते 50% ते 80% दित्तियां जा रही है किसान वीरां नूं। इसे तरह साडे कोल सुपर सीड भी लगभग 650 दे करीब हन। सुटेबल मशीनरी जिले विच उपलब्ध है अते किसान वीरां नूं कैंपां राही जागरूक जा रहा है कि एक पराली नूं आग ना लगाई जावे।
राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने किसानों की भलाई को हर संभव तरीके से सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए किसानों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है। उम्मीद की जाती है कि भविष्य में पराली प्रबंधन को अपनाकर वायु प्रदूषण पर काबू पाया जा सकेगा। परिक्रमा के लिए जलंधर से मैं अमन देव।
The 58th Indian Handicrafts and Gifts Delhi Fair has been inaugurated today at the India Export Centre and Mart in Greater Noida. The fair is organised twice a year in spring and autumn editions by the Export Promotion Council for Handicrafts. The aim of this fair is to connect international buyers to indigenous design professionals and wholesalers. We have more from a correspondent.
The five-day mega fair showcases 2,000 product lines and more than 300 trends across 14 distinct product categories such as housewares, tableware, furnishings, lighting, festive decorations among others. The fair offers a comprehensive exhibition of innovative concepts and products in 16 halls and 900 permanent showrooms at the India Expo Center and Mart. Further, the fair fosters a business-to-business trade among indigenous manufacturers and wholesalers and foreign buyers. Talking exclusively to Akashvani News, Elena Virucci, an exhibit highlighted the on-ground visibility of products through the fair. She said that the exhibition fosters the physical feel of products, providing buyers with a better experience.
Well, the fair is wonderful to promote our products because I still believe that on-ground visibility is very important. Even though online presence is honestly the main way to get exposure, I feel like on-ground visibility is really important because we have the kind of product that you do need to touch and feel, and that experience cannot be done online. So yeah, the fair is really important for us.
Another exhibitor named Leela Bodia from Rajasthan also shared her experiences on how the exhibition has helped her gain buyers for her product over the years. She added that the fair has helped her in connecting directly with the buyers.
पहले फेयर से इसमें अटेंड करी और आज जितना भी लोगों ने जाना है और जितना भी हमें बिजनेस मिलता रहा है उस फेयर के बदौलत ही मिलता रहा है।
The fair offers free to and fro shuttle bus service from various hotels in New Delhi. It is open from 9 in the morning to 6 in the evening. The autumn edition of this fair will end on the 20th of this month. For Parikrama, Bhanu Pratap Singh, Akashvani News, Delhi.
And now we will take on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
In today's episode, we remember the forceful divide and rule decision of the British Crown to disturb the nationalist Hindu-Muslim unity against the imperialistic forces and divide Bengal on communal lines into eastern and western areas. People rose together against this decision as Rabindranath Tagore's Amar Shonar Bangla took on a new meaning.
Amar Shonar Bangla, ami tomay bhalobashi, chirodin tomar akash, tomar batash, amar prane bajay bashi.
Since 1765, Bengal, Bihar and Odisha were a single province in British India. But Viceroy of India, Lord Curzon, the architect of the partition, planned to split Odisha and Bihar and join 15 eastern districts of Bengal with Assam, making the eastern province with its center at Dhaka. He thought that splitting Bengal would weaken and divide the nationalist movement.
After Curzon announced the partition on 19th July 1905, there was widespread political unrest in the province, as most people in Bengal saw through the nefarious plan of British and took this partition as an insult to their motherland.
The nationalists realized that partition was effected not just on administrative grounds, but for creating a permanent division between Hindu and Muslim communities by the British colonial power through its policy of divide and rule. In the western region, resistance to the partition was explosive and all-pervasive.
This involved non-violent and violent protests, boycotts, and even an assassination attempt on the governor of the new province of West Bengal. Surendranath Banerjee was one of the most important public leaders who protested against the partition of the Bengal province.
He was at the forefront of the movement and organized protests, petitions, and rallied extensive public support across Bengal and India.
The protest got momentum under the leadership of one of India's greatest poet, Rabindranath Tagore, who declared the day of the partition to be a day of national mourning. No food was cooked in Bengali homes that day.
To strengthen the bond between Bengali Hindus and Muslims, Tagore appealed to Hindus and Muslims to tie rakhis to one another, creating a lifelong bond of protection that no one could break.
Banglar mati, Banglar jal, Banglar bayu, Banglar phol.
The agitation against the partition of Bengal gave birth to Swadeshi and Boycott of British Products movement, which marked one of the turning points in the history of Indian nationalism.
The twin weapons of Swadeshi and Boycott, adopted by the Bengalis, became a slogan for all Indian nationalists, and they formed the basis of Mahatma Gandhi's non-cooperation, Satyagraha and Khadi movements. Following the massive protests against partition, Bengal was reunited in 1911 by Viceroy Lord Harding.
On 16th October, we are also observing the death anniversary of freedom fighter and politician Ganesh Ghosh. Born on 22nd of June 1900 at Binodpur village in Jessore district of Bengal province, Ghosh was arrested by British authorities in the Maniktala bomb case and was imprisoned for 4 years in 1924.
After his release, he joined the Chittagong Jugantar Party and participated in the Chittagong Arsenal raid along with Surya Sen and other revolutionaries on 18th April 1930. Ghosh was later arrested in Chandan Nagar and in 1932 was sentenced for life and deported to the cellular jail in Andaman.
In 1946, he was released and after independence, he became a leader of the Communist Party of India.
In business news today, the domestic benchmark indices today extended losses for the second straight session. The BSE Sensex lost 319 points to close at 81,501, and the NSE Nifty ended with a downfall of 86 points to settle at 24,971. Both the indices ended over 0.3% down.
और श्रोताओं, खेल जगत की अगर हम बात करें तो आज बेंगलुरु में भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की श्रृंखला का पहला क्रिकेट टेस्ट मैच बारिश के कारण नहीं हो सका। फिलहाल भारत आईसीसी विश्व चैंपियनशिप की अंक तालिका में शीर्ष पर है।
यस, एंड इन स्टॉकहोम ओपन टेनिस टूर्नामेंट एस इंडियन बैडलर सुमित नागल विल लॉक हॉर्न्स विद क्वेंटिन हेल्स ऑफ फ्रांस इन द मेन सिंगल्स फर्स्ट राउंड दिस इवनिंग। द मैच इज शेड्यूल्ड टू बिगिन दिस इवनिंग एंड मूविंग ऑन।
और श्रोताओं, आज है शरद पूर्णिमा। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं और इसे रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। ज्योतिष विज्ञान की मान्यता है कि संपूर्ण वर्ष में केवल आज के दिन ही चंद्रमा षोडश कलाओं का होता है और धर्मशास्त्रों में इस दिन को कोजागर व्रत माना गया है। श्रोताओं, रासोत्सव का ये दिन वास्तव में भगवान कृष्ण ने जगत की भलाई के लिए निर्धारित किया है, क्योंकि कहा जाता है कि इस रात्रि को चंद्रमा की किरणों से सुधा झड़ती है और इस दिन मंदिरों में विशेष तौर पर पूजन किया जाता है।
यस, एंड नाउ वी हैव रीच्ड दैट सेक्शन ऑफ अ प्रोग्राम वेयर इन वी रिमेम्बर ऑल दोस ग्रेट्स हु आर एसोसिएटेड विद टुडेज डेट, एंड वी स्टार्ट ऑफ विद जेम्स एल्बर्ट मिचनर हु पास्ड अवे ऑन दिस डे 1997। ही वाज एन अमेरिकन राइटर। ही रोट मोर देन 40 बुक्स, most of which were long fictional family sagas covering the lives of many generations set in particular geographic locales and incorporating detailed history. Many of his works were bestsellers and were chosen by the Book of the Month Club. He was also known for the meticulous research that went into his books.
और श्रोताओं, आज ही पुण्यतिथि है हरीश चंद्र मेहरोत्रा की। वे भारत के महान भौतिक वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे और गणितज्ञों के बीच में उनका बहुत ही नाम है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया था। और आज ही हम याद कर रहे हैं नरेंद्र चंचल को, आज उनकी जयंती है। माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों के लिए भजनों से उनकी पहचान बनी और अब भले ही वो दुनिया में मूर्त रूप से उपस्थित नहीं है, लेकिन आज भी हम उनकी गायकी को स्मरण करते हैं और उन्हें संगीत प्रेमियों से अथाह प्यार भी मिला था।
Yes, and Oscar Wilde was born on this day in 1854. He was an Irish poet and playwright. After writing in different forms throughout the 1880s, he became one of the most popular playwrights in London in the early 1890s. He is best remembered for his epigrams and plays, as well as his novel, The Picture of Dorian Gray. And also, Timothy Francis Robbins was born on this day in 1958. He is an American actor. He is best known for portraying N.D. Duff Resney in the film The Shawshank Redemption in 1994, and Jacob Singer in The Jacob's Ladder, as well as the role of Eric in Eric the Viking, among many others. He received an Academy Award nomination for Best Director for Dead Man Walking.
आज जयंती है दिगंबर हांसदा की। वे संथाली भाषा के विद्वान, शिक्षाविद और पद्मश्री से सम्मानित व्यक्ति थे, जो जनजातीय लोगों और उनकी भाषा के उत्थान के क्षेत्र में हमेशा से लगे रहे। उनकी लिखी हुई पुस्तकें आज भी कई पाठ्यक्रमों में शामिल हैं और उन्होंने देवनागरी से संथाली में अनुवाद भी किया था।
यस, माइकल पीटर बेल्जरी वाज बोर्न ऑन दिस डे 1962, नोन प्रोफेशनली एज फ्ली, ही इज एन अमेरिकन म्यूजिशियन एंड एक्टर। लेट्स लिसन टू द बैंड्स हिट ट्रैक Universally Speaking, and it's from the album By the Way, and it's from the band Red Hot Chili Peppers.
श्रोताओं, आज जन्मदिन है सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी का। अपने सौंदर्य, अभिनय और नृत्य के लिए लोकप्रिय हेमा मालिनी ने लगभग चार दशकों के फिल्मी करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी थी। उनकी मुख्य फिल्मों की बात करें तो शोले, ड्रीम गर्ल, क्रांति, रजिया सुल्तान और बागवान रही हैं। और उन्होंने सबसे पहले तेलुगु फिल्म पांडव वनवासम में एक नृत्य कलाकार के रूप में अपनी झलक बिखेरी थी।
Eugene Gladstone Ormond was born on this day in 1888. He was an American playwright. He reportedly titled plays were among the first to introduce into the U.S. the drama techniques of realism, earlier associated with Chekhov, Ibsen, and Strindberg. The tragedy Long Day's Journey Tonight is often included on lists of the finest U.S. plays in the 20th century. He was awarded the 1936 Nobel Prize in Literature. Ormond is also the only playwright to win 4 Pulitzer Prizes for drama.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए निखिल और अभिषेक को कार्यक्रम परिक्रमा यहीं पर संपन्न करने की।
नमस्कार
नमस्कार।